దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః గోవిందాయ నమో నమః హరే కృష్ణ. తో ఆజ్ ఆప్ సబ్కా పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ तो आज सब सबका श्रीमद् भागवत सत्र में स्वागत है. हरे कृष्णा. आज हम तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से 27वां श्लोक पढ़ रहे हैं. अध्याय का नाम है भगवान वराह का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड वराहदेव. उत्क्षिप्त बाला खचर कठोरा सटा विधुन्वन खररो मशत्वक खुराह ताब्र सितदंश्र इक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान महिद्रः. उत्क्षिप्त बाला खचर कठोरः सटा विधुन्वन् खररो मशत्वक् ఖురాహతాభ్రాసితదంశ్ర ఇక్షా జ్యోతిర్బభాసే భగవాన్ మహిద్రః. ప్లీజ్ రిపీట్. బాల కచర కఠోర సటా విధున్వన్ ఖరరో మశత్వక్ పురాహతాభ్ర సితదంశ్ర ఇక్షా భాసే భగవాన్ మహిద్ర. ఖచర కఠోర జ్యోతిర్బభాసే భగవాన్ మహిద్రః. ఓకే. ఉత్క్షిప్త బాలః, పూంచ్ కో ఫట్కారతే హుయే, ఖచరః ఆకాశ మే, కఠోరః అతి కఠోర, సటాః కందే తక్ లటక్తే హుయే కేశ్, విదున్వన్ హిలాతా హువా, ఖర तेज, रोमश त्वक रोम से भरी त्वचा, खुर आहत, खुरों से टकराया, अब्रह बादल, सित दंष्ट्रह सफेद दाढ़, इक्षा चितवन, चितवन यानी साइड लॉन्ग ग्लांस, ज्योति ही चमकीली, बभा से तेज निकलने लगा, भगवान भगवान, महिद्रह जगत को धारण करने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पहले भगवान वराह ने अपनी पूंछ को फटकारा और अपने बालों को, सख्त बालों को हिलाते हुए वे आकाश में उड़े। उनकी चितवन यानी दृष्टि बहुत चमकीली थी, तेज वाली थी, और उन्होंने अपने खुरों को यानी पैर में जो होते हैं ना हूव्स, और चमचमाती सफ़ेद दांत जो बाहर आए हुए हैं ऐसे, उसको हम इधर दाढ़ कहा है लेकिन संस्कृत में राइट वर्ड है दंष्ट्र, दंष्ट्र यानी दांत, दाढ़ यानी पीछे वाला, तो वो जो आगे आता है ना उसको कहते हैं ट्यूमुलाई, उसको वो चमचमा रही है और उनके खूर जो है वो लेकर आकाश में बादलों को उन्होंने बिखेर दिया, अपने दांतों के द्वारा, अपने खूर के द्वारा बादलों को इधर उधर कर दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है तो उनके दिव्य कार्य का वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुति की, अतः ये हम समझ सकते हैं कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं, अतएव आकाश की, आकाश पर उनकी चितवन यानी दृष्टि सूर्य या चंद्रमा उतनी ही चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महिद्रह कहा गया है जिसका अर्थ है विशाल पर्व या पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में कहा गया है भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान ने महान भक्त कविवर जयदेव के, भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव गोस्वामी ने इस घटना का अवतारों के अपनी स्तुति में वर्णन किया है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनी कलंक कलेव निमग्न, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनी कलंक कलेव निमग्न, केशवद्रीता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अर्थात भगवान केशव कृष्ण की जय हो जो शूकर के रूप में, वराह के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनके दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। जय हो, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद चल रहा है और तीसरा स्कंद में ये वर्णन बहुत रोचक है क्योंकि इसमें लीला है। भगवान जब किसी भी निमित्त के बिना कुछ कार्य करते हैं उसको लीला कहते हैं। हम जब निमित्त हेतु प्रयोजन पर्पज लेके काम करते हैं तो वो कर्म हो जाते हैं और वो कर्म का बंधन लगता है, फिर कर्म के बंधन में हम सुखी या दुखी रहते हैं। लेकिन भगवान जब बिना निमित्त के कोई कार्य करते हैं तो वो लीला होती है और भगवान को कोई कर्म या कोई बंधन नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम लोग जो कुछ करते हैं उसके बारे में अगर हम सुनते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं। समझो अभी आप, मैंने सुना कि आपने मर्सिडीज गाड़ी ली तो मुझे लगा अरे मुझे भी होना चाहिए, तो क्या हो गया, आसक्ति हो गई ना। वैसे हमारे कोई कार्य का हम लोग वर्णन सुनते हैं किसी का भौतिक का, भक्ति में नहीं, भक्ति वाला नहीं, यहाँ पर आके आरती किया, यहाँ पर आके पूजा किया, भौतिक भाव होगा तो उसके बारे में ईर्ष्या होगी, अरे मुझे कब मिलेगा, उसको क्यों दे रहे हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल भाव है हमारा तो हमें वो अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आके ना निरपेक्ष होना सीखते हैं और सीखना चाहिए। यहाँ पर आके ईर्ष्या करना सीखना नहीं है, उसको छोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। क्रोध ईर्ष्या बहुत सारे भाव है ना, लस्ट एंगर ग्रीड, ये बाहर है वो छोड़ने के लिए अंदर आते हैं। तो भगवान की लीला सुनने से कोई आसक्ति नहीं होती है, भगवान की लीला सुनने से विश्व की आसक्ति छूट जाती है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। ये भगवान की लीला सुनने का महत्व है। भगवान की लीला रोज सुनना चाहिए, चाहे यहाँ पर आकर भागवत सुनो या घर पे टेप में सुनते रहो या पढ़ो, लेकिन भगवान की लीला का श्रवण या पठन करना बहुत ही आवश्यक है इन विकारों से मुक्त होने के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो तीसरे स्कंद में ये जो वर्णन है, ये लीला का वर्णन है, इसलिए रोचक है, हाँ क्या कहते हैं उसको, आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। लेकिन आगे पीछे तीसरे स्कंद में जो वर्णन है ना वो सभी लोगों को रुचि नहीं देता है। क्या है वो, क्रिएशन, कौन से तत्वों को लेकर भगवान ने ब्रह्मा को क्या दिया, खुद क्या किया, फिर ब्रह्मा से क्या करवाया, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे जीव सृष्टि हुई, फिर सांप कैसे बने, फिर मनुष्य कैसे बने, फिर देवता कैसे बने, ऐसा बहुत सारा विशाल वर्णन है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, शंकर भगवान जब पार्वती को भागवत सुना रहे थे, कहाँ पर, कैलाश पे भागवत सुना रहे थे, क्योंकि भागवत जो है ना वो कई जगह पर कई लोगों के बीच में कहा गया है। व्यास देव ने अपनी पत्नी को बताया है बद्रिकाश्रम में, शिव जी ने कैलाश में बताया है, नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने बताया है, गंगा किनारे में शुकताल में सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, ऐसे शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को करेला गांव में बताया है, वृंदावन धाम में, ऐसे अनंत बार ये श्रीमद् भागवत का संवाद हुआ है। तो जब शिव जी पार्वती को ये संवाद सुना रहे थे तो शिव जी क्या भागवत सुनते समय, शिव जी तो मग्न होकर भागवत सुनाते हैं। एक बात कही गई है कि कथा जो है ना वो डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए, दैट मीन्स द स्पीकर शुड स्पीक विथ फुल ऑफ इमोशन, फुल इन्वॉल्वमेंट, एनग्रोस्ड इन कथा, एंड द श्रोता द लिसनर शुड लिसन टू इट विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, डूब कर सुनना चाहिए। तो वो कथा आप डूब कर कह रहे थे, लेकिन थर्ड कैंटो का जब वर्णन शुरू हुआ तो पार्वती सो गई। फिर आगे भी फिफ्थ कैंटो है, उसके अंदर केवल नरकों का वर्णन है, पढ़ना चाहिए उसको, थोड़ा डरना भी चाहिए ना कि हम लोग क्या करेंगे तो क्या होगा, अगर पता ही नहीं तो फिर करते रहेंगे उसको। तो पार्वती सोती रही, वो कथा कहते रहे, लेकिन फिर भी एक समझना ज़रूरी है, भागवत में कुछ सिद्धांत भी है और बहुत सारी लीला भी है, लेकिन सिद्धांत भी पढ़ना चाहिए। भागवत में और चीज़ है, प्रार्थना, इतनी प्रार्थना है जनरली जो ऐसा कथा सुनना है कथा पढ़ना है, क्या कहते हैं, स्किप करते हैं उसको, ऑप्शन डालते हैं उसको। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना शुरू किया आगे आगे आगे, 40 श्लोक आगे। खुद ने प्रार्थना शुरू किया आगे आगे आगे, है ना। देवताओं ने प्रार्थना शुरू किया देवकी के लिए, गर्भ के लिए, आगे आगे, गो एड गो एड। गजेंद्र ने प्रार्थना शुरू किया, गो एड। तो लगता है ऐसा आधा भागवतम तो प्रार्थना में समाप्त हो जाएगा, आपको लगेगा हमने जल्दी भागवतम फिनिश किया। लेकिन वो प्रार्थना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी प्रार्थना का वर्णन आएगा, बोर मत होना, क्योंकि प्रार्थना जो है ना, फॉर एग्जाम्पल तो ब्रह्मा की प्रार्थना है, 40 श्लोक है उसके अंदर, इतने सुंदर साक्षात्कार उसके अंदर वर्णन किए गए हैं, डीप रियलाइजेशंस। ब्रह्मा जी कौन से स्थिति से गुजरे हैं और उनको क्या अनुभूति हो रही है, वो पूरा 40 श्लोक में वर्णन किया है। भगवान की लीला देखने के बाद, सही भाव से देखने के बाद क्या होता है हृदय में, उसका पूर्ण प्रकटीकरण है वो। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट ऑफ ब्रह्मा आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दैट व्हाट ही वेंट थ्रू इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। सो स्किप मत करना उसको कभी। तो अभी ये जो कथा है, इसके पीछे थोड़ी छोटी कथा है, वो आपको बताना जरूरी है। वैकुंठ में विष्णु है, लेटे हुए हैं, लक्ष्मी देवी चरण दबा रही है। वैकुंठ के गेट पर कौन है? जय और विजय। तो एक बार अभी वैकुंठ में क्या होता है, अधिक समय ना स्तुतियाँ ही चलती रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्तुति एंड स्तुति, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर स्तुतियाँ ही चलती रहती हैं। वहाँ पर ऐसा जाके हे विष्णु चलो गोटी खेलेंगे, ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। लेट्स गो एंड डांस, चलो माखन चुराते हैं, ये नहीं हो सकता है। वहाँ पर ऑ एंड रेवरेंस, आदर सम्मान, स्तुति, सेवा, दास्य भाव, यही हो सकता है, दैट्स ऑल लिमिट, उसके आगे नहीं जा सकते। लक्ष्मी देवी का प्रेम पति पत्नी का संबंध है, वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, और खेलने का कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो प्ले ग्राउंड, इज नो प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग विद विष्णु। तो केवल स्तुतियां ही स्तुतियां चलती रहती हैं। तो क्या होता है, एक स्तुति कौन कौन करते हैं, चार कुमार के करते हैं, नारद मुनि करते हैं, कभी अलग अलग सब संत लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं, स्तुतियाँ करते रहते हैं, वैकुंठ को भेंट देते हैं, भगवान को अपना ऑफरिंग देते हैं, गौरव करते हैं, श्रुति करते हैं। दिस इज व्हाट वैकुंठ इज, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत चकाचक सब कुछ है, एवरीथिंग रत्न हीरे जवाहरात ऐश्वर्य, और आपको लगेगा कि अपुलेंस वैभव सब जगह है। तो उसमें एक स्तुति चल रही है, उसमें भगवान की स्तुति क्या हो रही है कि भगवान कमल की पंखुड़ी से भी अधिक कोमल है, और भगवान वज्र से भी अधिक कठिन है। समझ में आपको आया, वैष्णवों का भी ऐसा वर्णन आता है कि वैष्णव भी ऐसे जब चाहे तभी कोमल हो सकते हैं। मऊ मेणा हुनी वैष्णव अमी कठिन वज्रा सही भेदू ऐसे, यानी समय आएगा तो एकदम मेन है ना, मेन मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैंडल का क्या होता है वो, वैक्स, उससे भी कोमल हो सकते हैं, कमल के दल से भी कोमल हो सकते हैं। लेकिन समय आएगा ना, नाठाड़ा चे माती हाणू काठी, कोई ऐसा कोई आएगा क्रेजी मैन तो उसको डंडा भी मार सकते हैं, समय को देखते हुए गन भी उठा सकते हैं, जैसे मायापुर में उठाया था। जब करते दिन भर, लेकिन जब आक्रमण हुआ तो सीधा ठा 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 ठा, मायापुर में हुआ था। तो ये जो वर्णन है ना भगवान का कि वो कठोर से कठोर, वज्र से भी कठोर हैं, ये जय विजय सुन रहे हैं वो गेट पे, तो क्या है वो खाली वैसा ऐसा नहीं खड़े हैं, वो भी भक्त हैं भगवान के, वो भी खड़े रहते हैं, कॉन्स्टेंटली भगवान की स्तुति सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अरे तो सुना है अभी बोर हो गया अभी वही वापस आके वही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं। हमको भी भगवान का समझो, ये श्लोक अभी आप किसी और मंदिर में गए समझो, और वहाँ पर बाय द चांस यही श्लोक आया, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए हर ये श्लोक पे कथा तो मैं सुन चुका हूँ, अभी मेरे को नहीं सुनना है, अभी मैं क्लास में आज नहीं आता हूँ परसों आता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये श्लोक या आगे के श्लोक 18,000 श्लोक, इसके अंदर इतना डीप, इतना डीप, इतना डीप, इतना डीप है कि आप 50 बार 100 बार भी सुनोगे ना तो भी आपको उसके अंदर नया नया नॉलेज मिलेगा। और एक ही क्लास अगर आप 50 बार सुनोगे तो भी आपको नया नया नॉलेज मिलेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. मैं सऊदी अरब में गया था काम करने के लिए कुछ समय के लिए, तो उस समय कैसेट चलते थे. तो मेरे पास उधर सऊदी अरब में भगवान का किताब, भगवान का ऑडियो फोटोग्राफ वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है. वो आप एंट्री करते ना, तभी उधर ही सब फेंक देते हो निकाल के. अगर मिला उनको तो सीधा कचरे का डब डालते हैं. आपके आंखों के सामने भगवद गीता कचरे में, कृष्ण का फोटो कचरे में डाल देते हैं. कोई कैसेट मिला अंदर, तो मैंने छुपा छुपा के सब अच्छी तरह से चैतन्य चरिता में लेके गया था, और दो तीन कैसेट ही खाली, और एक सारे सारे फोटो जो है कवर के अंदर छुपा के लेके गया था. इसको 50 कवर डाल के एक कवर के बीच में फोटो ऐसे लेके गया था. तो दो कैसेट मेरे पास पहुँच गए थे. क्या बताऊँ आपको, वो दो कैसेट मैंने 790 दिन सुने. 2 years and 2 months, 26 महीने इज इक्वल टू 790 डेज, अप्रोक्सीमेटली 800 डेज बोल सकते हैं आप, सब 31 डेज पकड़ के. रोज किचन में खाना बनाते समय मैं अकेला था, आई यूज टू हियर द सेम कैसेट, सेम लेक्चर. बट मैं आपको ना हृदय पर हाथ रख के कह सकता हूँ, मुझे वो सुनकर कभी भी बोर नहीं हुआ. ऑलमोस्ट मुझे बाय हार्ट हो गया था पूरा लेक्चर, इसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी बोलने वाले हैं. लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि बस अभी बोर हो गया, अभी इसको एक बना ब्रेक देते हैं, बाद में सुनते हैं, फिर नया इंटरेस्ट आएगा. इसलिए श्रीमद् भागवत के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अरे तो बोरिंग श्लोक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, रस नहीं है. रस रस आएगा जब हम शुद्ध होंगे, तो आपको भगवान के और भागवत के हर शब्द में रस आएगा. अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो रस नहीं है. भक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, भौतिक दुनिया में इंटरेस्ट है, इसलिए रस नहीं आ रहा है. तो मैं ये क्यों सुन रहा था, आपको बता रहा था, जय विजय बाहर होकर ये रोज स्तुतियाँ सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिपीट होगा ना. नारद मुनि का आप आके बोलेंगे आप कितने दयालु हैं, तो अगस्त मुनि आके भी बोल सकते हैं आप कितने दयालु हैं. रेज वो सेम बात क्यों कहते हैं, टेल समथिंग न्यू. ऐसा नहीं है, तो वो सुन रहे हैं तो उनको लगता है कि कोमल तो है, मैं जानता हूँ बहुत. भगवान का जो बॉडी है ना, जैसे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, बलराम जी, कृष्ण, इनका बॉडी है ना, वो यशोदा और रोहिणी है ना, वो ऐसा बच्चे को उठाते ना, आप लोग बच्चे को उठाते ना ऐसा, तो वो उठाने को डर लगता है उनको. उनको लगता है कि हमारी जो उंगली है ना वो हार्ड है, उनका बॉडी जो है वो मक्खन जैसा है. अगर हमारे हार्ड उंगलियों से ऐसा उठाएंगे उनको, तो उनका मक्खन जैसा बॉडी में दर्द होगा. इसलिए उनको संकोच होता है उनको उठाने में, इतना बॉडी ऐसा उंगलियां मिलती है उनकी, समझ में आया. जैसे मैं आपको पकड़ेगा तो उंगलियां मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना. लेकिन उनका ऐसा उंगलियां मिलती थी, इतने सॉफ्ट था भगवान का शरीर. तो भगवान के सॉफ्टनेस कोमलता के बारे में वो बोले बराबर है, लेकिन भगवान वज्र से भी कठोर कैसे हो सकते हैं, ऐसा उनको डाउट आया मन में. क्योंकि कभी भी उन्होंने वैकुंठ में भगवान को वज्र से भी कठोर होते हुए नहीं देखा है ना. वज्र से कठोर होने का दो मतलब है, एक है शरीर बॉडी, हाँ, थाइज, फिंगर्स, पाम्स, हार्ड एकदम फौलाद की तरह, और एक है एक्टिविटी. कैसे प्रसंग आएगा तो भगवान ऐसा कठोर से कठोर भी बोल सकते हैं, कठोर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कठोर दंड दे सकते हैं. तो वो हो गया एक्टिविटी, हर एक हो गया शरीर का स्वरूप. दोनों तरफ से भगवान वज्र से भी कठोर हो सकते हैं. तो लेकिन उनको लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है. और भगवान क्या है ना, सबके मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ जानते हैं. आपको इस पे विश्वास है, हम शायद ये भूल जाएंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान जानते हैं नहीं है पता नहीं है, लेकिन हम जो भी कुछ सोच रहे हैं वो भगवान सब जानते हैं. तो जय विजय के मन में क्या चल रहा है भगवान ने समझ लिया, तो उन्होंने तुरंत चार कुमारों को प्रेरणा दिया, आ जाओ. तो आ गए और लीला रचाया, क्योंकि उनको जय विजय को ये बताना था कि यस मैं कठोर से कठोर भी हो सकता हूँ और हूँ. आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मैं भी दिखाऊंगा आपको. तो कुमार आए, चार कुमार आए, और चार कुमार आए तो उनको, चार साल के नंगे बालक है वो, तो जो चार साल के चार बालक यहाँ भाग भाग के आएंगे
नंगे बिना कपड़े पहने हुए। आप लोग बोलेंगे क्या क्या है, कुछ एटिकेट नहीं है, कुछ शिष्टाचार नहीं है, कुछ माताओं को समझता है क्या मंदिर में उसको नंगा भेजा, 4 साल के बालक है वो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, कोई संकोच नहीं है। लेकिन 4 साल के बालक अगर नग्न अवस्था में आए तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको दंडवत करेंगे क्या, तो बालक है खेल रहे हैं इधर उधर, तो उन्होंने दंडवत नहीं किया। लेकिन वो कोटि कोटि वर्ष पुराने ऋषि हैं, उन्होंने योग बल से अपना शरीर 4 साल का ही बना कर रखा है ताकि 4 साल के बाद में बड़े होने के बाद में फिर वो लष्ट सब कुछ होता है ना शरीर में, वो चाहिए ही नहीं उनको, शरीर को ऐसा बना के रखा है 4 साल का। लेकिन है वो हजारों साल कोटि साल के ऋषि जिनको दंडवत करना जरूरी है, दंडवत नहीं किया उन्होंने, उन्होंने शाप दिया उनको, जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ, जन्म ले लो। अभी हम लोग आप लोग, मैं भी इधर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं, किधर है हम लोग, पृथ्वी लोक पे ना आराम से बैठे हैं, रोज रोटी खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, साउथ इंडियन वाह वाह करते हैं, बढ़िया से कपड़ा पहनते हैं, जाते हैं घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार करते हैं, हम लोग सेटल्ड है यहाँ पर। लेकिन जय विजय को बोला ना जाओ मटेरियल वर्ल्ड में जाओ ब्रह्मांड में जाओ, तो बोले नहीं जाना है हमको, हु विल गो देयर, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा गर्मी का तकलीफ सर्दी का तकलीफ तूफान आंधी दूसरे लोगों के द्वारा तकलीफ खुद को खुद ने दिया हुआ तकलीफ बीड़ी पी के और सिगरेट पी के और कुछ गलत बोल के इतना प्रकार का कष्ट है, फिर कर्म का बंधन, फिर बदबू वाला शरीर, फिर ये फिर वो, कितना तकलीफ है इसके अंदर, फिर बुढ़ापा, कभी सुंदर दिखता है तो बुखार आया तो एकदम बेकार दिखता है, डिहाइड्रेशन हो गया तो पूछो ही मत देखो ही मत फोटो ही मत निकालो उसका, नो सेल्फी व्हेन देयर इज डायरिया, है ना, आई डोंट वांट टू गो, हम लोग को जाना नहीं उधर। बोले आपको 7 बार भक्त का जन्म लेके जाना होगा, बोले 7 बार तो बहुत होता है, क्योंकि टाइम हम लोग को जाने में तकलीफ नहीं है, लेकिन 7 बार कौन जाएगा, 7 बार जन्म, 7 बार बीमारी बुढ़ापा, 7 बार मृत्यु, इतना लंबा समय भौतिक दुनिया में। जैसे आपको बोलेगा अभी आप मंदिर में रह रहे हो अच्छा खुशबू आ रही है, अभी आपको गटर के पास 15 मिनट रहना है तो कैसे रहेंगे आप, इतना खुशबू लेके यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है तो भी गटर के पास 15 मिनट रहना मुश्किल है, आप नहीं जा सकते, प्रभु जी और कुछ सेवा दो, इतना बड़ा दंड मत दो। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि 7 बार ठीक है लेकिन भौतिक दुनिया में कौन जाएगा, तो उसमें एक ही डिस्काउंट है आपको, 3 बार डीमन बन के जाना पड़ेगा, राक्षस बन के, बोला चलेगा वो है तो परम भक्त भगवान के, लेकिन डीमन बनकर भी जाने को तैयार है क्योंकि कम समय लगेगा उधर। ये सुन के हमको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको भी ऐसा लगना चाहिए, दिल उठना चाहिए यहाँ से, यू नो यू शुड गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑफ बीइंग ओवर हियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी हियर, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा भी लगना चाहिए आई डोंट बिलोंग हियर, कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, है वो हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जन्म लिया हूँ सब कुछ है लेकिन मैं इधर का नहीं हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर, ये भावना डेवलप होनी चाहिए ऑटोमेटिक, रटकर नहीं, अंदर से लगना चाहिए दिस इज टू फ्रस्ट्रेटिंग ओवर हियर। तो हमको इस कथा से पूरी प्रेरणा मिलेगी, है ना, बेनिफिट होगा, जैसे वो देवी देवता भी यहाँ पर आकर यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी का बात क्या है, यहाँ पर बदबू है शरीर में, किसी के पास भी जाओ, सुंदर आदमी के पास जाओ या कुरूप व्यक्ति के पास जाओ, अमीर व्यक्ति के पास जाओ या गरीब व्यक्ति के पास जाओ, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाओ या अनपढ़ व्यक्ति के पास जाओ, शरीर का बदबू सेम है, सेम मतलब अलग अलग है लेकिन बदबू है। स्नान करने के बाद तुरंत बदबू आना शुरू हो जाता है तो देवता लोगों का शरीर से सुगंध आती है इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं पृथ्वी पर। इफ यू गिवन अ चांस होस्ट करके आ जाते हैं क्षणे पुण्य मर्तलों के विचंती, लेकिन आना नहीं चाहते बाय चॉइस। तो उन्होंने फिर 3 बार राक्षस का जन्म लेकर आना शुरू किया, एक्सेप्ट किया। फिर पहली बार वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। ये उसका बैकग्राउंड है, ये बहुत समझना जरूरी है, शुरू कहाँ से हुआ। और भगवान जब भी समझो भी इसके मन में देखा कि इसको मेरे वज्र होने पर विश्वास नहीं है तो मैं भी लीला करता हूँ, लेकिन जब लीला करते हैं तो अनेक उद्देश्य एक बार पूर्ण कर लेते हैं एक ही साथ। क्या उद्देश्य और पूरा किया? एक तो इनको बताना है कि भाई मेरा शरीर वज्र से भी कठोर है, चलो बता देता हूँ। कभी मालूम पड़ा उनको, जब ये हिरण्याक्ष वराहदेव से युद्ध कर रहा है तो पता है उसकी गदा जो है ना कितने वजन की है? भगवान के पास भी गदा है, वो भी बहुत भारी है, 1,00,000 भार। व्हाट इज 1 भार? डू यू नो? 40 किलोज। 1,00,000 भार मतलब कितना हुआ? 40,00,000 किलो की एक गदा है और वो गदा से युद्ध हो रहा है। और वो गदा से हिरण्याक्ष ने जब भगवान वराह को मारा तो उसका गदा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तब जय के रूप में जो हिरण्याक्ष है उसने देखा, अरे मेरा 40,00,000 किलो का गदा से मैं पूरा, ऐसा नहीं कि ऐसा रख दिया हाथ पे ऊपर जोर से मार रहे हो, ऐसा नहीं खाली से हाथ को रख दिया टच कर दिया, ऐसा नहीं, वो गदा पूरे फोर्स के साथ प्रहार कर रहे हो। और वो गदा लगने पर, भगवान के हाथ पर लगने पर उसकी गदा चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तब देवी देखते अरे तो वज्र का शरीर है इनका। तो हिरण्याक्ष के रूप में जय जो था उसको पता चला कि यस ये इनका शरीर वज्र भी हो सकता है। कैसे? स्थिति के अनुसार, सर्वर सराउंड जो एटमॉस्फेयर है, जरूरत के अनुसार वो वज्र बन सकते हैं। दूसरा गदा लिया वो भी टूट गया, ऐसे भगवान का शरीर। दूसरा से ये पर्पज उनका फुलफिल हो गया। बाकी पर्पज क्या फुलफिल किया? विष्णु लोक वैकुंठ में राक्षस नहीं होते, सब लोग भक्त होते हैं, सब लोग सेवा करते हैं। तो अगर मारा मारी करने का मूड आएगा तो किसके साथ मारा में करेंगे, सब लोग फ्रेंड है इधर। तो भगवान की जो वीर रस की जो भूख है, वीर रस की क्षुधा, हंगर ऑफ वीर रस, वो पूरा करने के लिए भगवान अपने भक्तों को ही चुनते हैं और उनको राक्षस बना देते हैं, नीचे भेज देते हैं, खुद भी दूसरा रूप लेकर नीचे आ जाते हैं और उनके साथ में दिल भर के हृदय से युद्ध करते हैं, है ना। तो उनका जो युद्ध करने की, मार झाड़ करने की जो रियल में इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तीसरा उद्देश्य, ऐसे अनंत उद्देश्य है, हम लोग थोड़ा निकाल रहे हैं। तीसरा उद्देश्य क्या है? वो जब ऐसी लीला करते हैं तो इस विश्व में जो फंसे हुए लोग हैं वो देखते हैं सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे भगवान हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो वो जो लीला प्रस्तुत करते हैं, जो ड्रामा नाट्य मंचन करते हैं, उससे बद्ध जीवों को प्रेरणा मिलती है, उनके हृदय में भक्ति को, भक्ति प्रफुल्लित हो जाती है, भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति का आरंभ हो सकता है। इसलिए भगवान आते हैं अपने भक्तों को लेकर। तो जितने भी रावण, कुंभकर्ण और आप जितना भी राक्षस का नाम ले लो, वेणा जो भी है, ये सब लोग जो है वो भगवान के भक्त हैं। और भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए, जीवों को बोध देने के लिए, जगत के कल्याण के लिए अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। कभी राक्षस बन के भी आते हैं युद्ध करने के लिए, भगवान का संतुष्टि करते हैं युद्ध करने के लिए, विश्व को भी प्रेरणा देते हैं, एक आदर्श स्थापन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? ऐसा करते हैं कि लगता है ऐसा होना चाहिए। और राक्षस लोग क्या करते हैं? तो नहीं होना चाहिए। तो ये है वराहदेव का बैकग्राउंड, अवतार का और जय विदेह का। उसके पीछे भी एक छोटी स्टोरी है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे हुआ। प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? कश्यप मुनि। और उनकी कई पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम क्या है? दीति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ। एक पत्नी थी दानु, जिनसे दानवों का जन्म हुआ। और एक पत्नी थी अदिति, जिनसे देवताओं का जन्म हुआ। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, ये सभी उनके पुत्र हैं। फिर एक बार उनके पुत्र के रूप में उपेंद्र, यानी इंद्र के भाई उपेंद्र, यानी वामन देव का जन्म हुआ। तो ऐसे ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। यहाँ की लीला करते हैं। थर्ड कैंटो में बताया गया है निर्माण, क्रिएशन, सृष्टि, सृजन लीला करते हैं भगवान। तो अभी कश्यप मुनि का विवाह हुआ। अभी हम सब लोग गृहस्थ हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं, लेकिन बहुत लोग गृहस्थ हैं जो विवाह करते हैं, पत्नी को घर लेके आते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर बच्चे को जन्म देते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, बहुत सारा काम है इसमें। तो इसमें जन्म देने का भी विधि होता है। दिन में कितने प्रहर होते हैं, एनी आइडिया? दिन 24 घंटे का होता है, 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। हर प्रहर कॉमन नहीं है, हर प्रहर का मूड अलग है। सुबह 3 से 6 का मूड क्या रहता है? चलो उठो, जल्दी स्नान करो, भगवान का नाम का जप करो, मंगल आरती करो, भगवान को जगाओ, बाल भोग लगाओ, हाँ जप करो, पूरा श्रृंगार करो भगवान का, एक भगवान के विषय में पूरा टाइम वो इन्वॉल्व है। 12 से 3 का टाइम का क्या मूड है? अगर आप जगे रहेंगे, जगना नहीं चाहिए आपको, प्लीज़ 12 से 3 में कभी भी जगा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जगने से बुरे बुरे विचार मन में आते हैं, सारे खून खराबे, बलात्कार, चोरी, डकैती, आतंकवाद कब होता है? रात को होता है, 12 से 3, उसको कहते हैं राक्षस प्रहर, ओके? और एक बार सूर्योदय हो गया 6 के आसपास, कभी 7 बजे, 6:30 बजे, फिर क्या होता है? रजोगुण का आरंभ होता है। घर पे क्या होता है? दूध वाला आएगा, धोबी आएगा, हाँ कुछ कुछ बेल बजेगी, काम शुरू होगा, खाना बनाना है, किचन शुरू होगा, ये होगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, काम पे जाना है, ट्रेन पकड़ना है, वापस आना है। तो दिन भर जो है सूर्यास्त तक क्या होता है? रजोगुण। वो आपको भजन करना अच्छा है, उसमें भजन करना भी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं भजन करना, क्योंकि भजन करेंगे तो फोन आएगा आपको, अरे वो क्या हुआ, वो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मंदिर में भी ऐसा ही है, दिन हो गया तो फिर दिन के मंदिर का कुछ, वो काम करने वाले नहीं आए, वो प्लम्बर नहीं आया, वो बल्ब खराब हो गया था, वो भगवान का ड्यूटी का काम करना था, वो नहीं आया क्या? ये दिन में शुरू होता है, लेकिन सुबह 5 बजे 3 बजे 4 बजे ये सब नहीं होता है, प्लम्बर का और बिजली वाले का काम नहीं होता है, खाली हरे कृष्णा ही होता है और होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह 6 बजे से ही मैनेजमेंट का टॉक शुरू करते हैं, जब माला लेके वो पूरा मैनेजमेंट डिस्कशन, मंदिर में क्या हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में स्कोर इतना कम क्यों हो रहा है, वो डिस्कशन 3 बजे से 6 बजे तक नहीं करना है आपको, 7 बजे तक नहीं करना है। प्ले वाइल यू प्ले, चैंट प्रे वाइल यू प्रे, ऐसा बचपन में कहावत, प्रे वाइल यू प्रे, प्रे के टाइम पे प्रे ही करो और खेलने के टाइम पे खेलो, ऐसे बच्चों को बताते हैं हम लोग, और सोने के टाइम पे सो जाओ, सोने के टाइम पे जग के पढ़ाई मत करो, और उठने के टाइम पे सोना मत, लेट सो के। तो वैसे सब लोग सुन लीजिए, बालक को जन्म लेने के लिए जो पति पत्नी का संबंध होता है उसका टाइम है 2रा प्रहर, यानी रात का 2रा प्रहर। रात का पहला प्रहर कभी है? 6 to 9 PM। 2रा प्रहर कभी है? 9 to 12। और राक्षस प्रहर कभी है? रात को 12 से 3 बजे तक। ब्रह्मा मुहूर्त कभी है? 3 से 6। और 6 से 6 क्या है, कितना घंटा है? 12 घंटा। कितने प्रहर हो गए? 4 प्रहर। तो वो सब दुनियादारी के काम करने के लिए, भगवान की सेवा में, लेकिन वर्ल्डली एक्टिविटीज। तो 6 बजे जब ही शाम का पहला प्रहर आरंभ होता है, उस समय हमको न दिखने वाली ये घटना होती रहती है, पता है आपको? वी कांट सी दैट इट इज हैपनिंग। संध्या के समय का डेफिनेशन क्या है? हम लोग कल वो उधर गए थे ना गोकर्ण में, संध्या का मतलब क्या है? सूर्य अस्त हो चुका है, रात अब तक आई नहीं है, उसके बीच में एक टाइम होता है, उसके बीच में अंधकार नहीं होता है, एक लाइट होती है आकाश में, अभी पूरा डार्क नहीं हुआ है, नाइट नहीं हुआ है, रात्रि का निर्माण नहीं हुआ है, और दिन भी नहीं बोल सकते क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, तो वो ट्वाइलाइट कहते हैं उसको, संधि प्रकाश कहते हैं, उस काल को संधि काल कहते हैं। और हम सब लोग ब्राह्मण लोग उस समय गायत्री करते हैं, संधि गायत्री, संध्याकाल गायत्री, त्रिसंध्या गायत्री करते ना, तो शाम का संध्या वंदनम उस समय पे होता है, सूर्योदय के आसपास, और 1 घंटा हो सकता है मैक्सिमम, फिर रात होने के बाद में करना अच्छा नहीं है। उस टाइम पे भगवान शंकर अपने सारे भूत प्रेत पिशाच गण जितने भी ऐसे जीव हैं उनको लेकर वातावरण में घूमते रहते हैं। क्यों? वो जो जीव हैं जो शिव जी के आश्रय में हैं उनकी क्या विशेषता है? वो शरीरहीन है, सूक्ष्म शरीर उनके पास है, मन बुद्धि अहंकार है और आत्मा है, तो सूक्ष्म शरीर से ढका हुआ है वो, और हमारा जैसा हाथ पांव वाला शरीर नहीं है, यानी भूत प्रेत समझ सकते हैं उसको। भूत प्रेत का मतलब क्या होता है? वो भी जीव है हमारे जैसे, लेकिन उनको वो बॉडी नहीं है, वो हाथ लेके ऐसा लेके पानी पिएगा ऐसा नहीं हो सकता है, वो भूख लगेगी तो हाथ में लेके खाना खाएगा और पेट रहेगा पचन करने के लिए, ऐसा शरीर नहीं है। इच्छा बहुत है लेकिन इच्छा को भोग करने के लिए शरीर नहीं है, तो क्या जरूरत है? शरीर की जरूरत है, भोग करने के लिए भी है और मुक्त होने के लिए भी शरीर की जरूरत है। देखो शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवल भोग लेने के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए भी शरीर जरूरी है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही मोक्ष मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकतर लोग भौतिक दुनिया में क्या सोचते हैं? मानव शरीर मिला है, ये जिंदगी ना मिले दोबारा, एंजॉय, जो दिखता है उसको एंजॉय करो। कुत्ता बिल्ली एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप लोग हम लोग कर सकते हैं, करो, उसके लिए जिंदगी है, यूज इट नाइसली। कुत्ता बिल्ली से ऊपर उठ जाओ और अच्छी तरह से एंजॉयमेंट करो, ऐसे लोग कहते हैं, जैसे चार्वाक मुनि, मटेरियलिस्टिक सो कॉल्ड साधु। लेकिन लोगों को बोलते हैं कुछ भी हो कृतम पिवेत, हाँ जो भी है घी के साथ खाओ, मतलब क्या होता है उसका? बढ़िया से खाओ, आनंद लो, एंजॉय, एंजॉय टू द ब्रिम। लेकिन ये शरीर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के शरीर के माध्यम से भगवान भी मिल सकते हैं। ये शरीर भोग की वस्तु भी है और मोक्ष की वस्तु भी है, भक्ति की भी साधन यही शरीर है। तो उन लोगों को भोग के लिए नहीं, उन लोगों को शरीर प्राप्त हो मनुष्य का और उससे वो भक्ति करने का और मुक्त होने का मौका मिले, बार बार भूत प्रेत बनने की आवश्यकता नहीं है, करुणावश उनको आश्रय देते हैं और करुणावश घूमते रहते लेके, क्या क्या करते हैं घूमते हुए? इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। वो देखते रहते हैं कि इस समय कोई मनुष्य कोई पति पत्नी संबंध कर रहे हैं क्या, अगर उस समय कोई मनुष्य पति पत्नी संबंध कर रहे हैं तो उसको छोड़ देते उसके अंदर। तो संधि काल में शाम को 6 बजे से 9 बजे से टाइम में, खास करके संधि काल में, सूर्यास्त के बाद अंधकार होने के पहले बीच काल में अगर कोई पति पत्नी साथ में आते हैं तो उनको राक्षसी संतान होती है, भूत प्रेत उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं शरीर धारण करने के लिए। और ये ट्रेनिंग सभी गृहस्थों को देना चाहिए क्योंकि 100 में से 95 और 99 तो गृहस्थ ही होते हैं, एक आध व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है जिसको ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन 99 लोग जो लड़के हैं लड़की है विवाह करने वाले हैं और संसार करने वाले हैं प्रपंच करने वाले हैं गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, भक्त है या नहीं भक्त है उनको पता होना चाहिए। ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं जो शराब पीते हैं, आतंकवादी बनते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, लोगों का खून करते हैं, गाय की हत्या करते हैं, लोगों का जमीन हड़प लेते हैं, उनको क्रूरता है मन में, कोई दया नहीं है किसी के प्रति, खाली स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थी है और गहरी मार्ग से भोग लेना चाहते हैं, नशा करना चाहते हैं। उनका अधिकतर जो कंसेप्शन है ना गर्भधारणा वो उस टाइम पर होती है क्योंकि फिर शिव जी के जो गण हैं वो प्रवेश करते हैं उनके अंदर। इसलिए सभी शादीशुदा होने वाले लड़का लड़कियों को ये ट्रेनिंग होना चाहिए कि बच्चा प्रकट बच्चा जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको 9 बजे के बाद और 12 बजे के पहले करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद भी करेंगे तो राक्षस प्रवेश करते हैं क्योंकि राक्षस प्रहर है। वो उस समय कौन सा कॉन्शियसनेस है? उसी कॉन्शियसनेस को सोल आता है, जो कॉन्शियसनेस आप प्रकट कर रहे हैं उस स्थिति में उसी के अनुकूल जीव उसके अंदर आता है। दारू के अड्डे पर कोई भक्त दारू पीने जाता नहीं है, वहाँ पर डिम लाइट लगाते हैं, डिस्को म्यूजिक लगाते हैं और बहुत सारा ऐसा क्या कहते हैं उसको, बहुत आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू, बहुत भयंकर वातावरण रहता है। लेकिन उस वातावरण को देखकर शराबी अट्रैक्ट हो जाता है, तो आता कौन है उसके अंदर? शराबी। लेकिन भक्त लोग अगर जा रहे हैं प्रोग्राम खत्म करके घर जा रहे हैं और देखते हैं अरे तो डिम लाइट लाइट लगा कर रखा है, अच्छा सारा दारू का बॉटल रखा है, तो भक्त लोग वहाँ जाएंगे क्या? वो तो मंदिर चले जाएंगे। समझ, भक्त लोग जा रहे हैं अचानक आरती का आवाज़ आता है, देखा अरे तो नया मंदिर कभी गया नहीं, तो भक्त लोग उसमें प्रवेश करेंगे, है ना। तो जैसा वातावरण निर्माण हुआ है उसी प्रकार के जीव उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो राक्षसी प्रहर का राक्षसी वातावरण जो है तमोगुणी, तो उस समय अगर हम संबंध करते हैं तो तमोगुणी जीव ही अंदर आएगा तुम्हारे बालक बनने के लिए, और फिर जन्म से ही चालू उसका अशुभ। तो कश्यप मुनि दीति जो उसकी पत्नी थी, कश्यप मुनि तो जप में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, वो प्रजापति है, भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं वो। दीति को इच्छा हुई संबंध करने की, तो वो पति का धोती खींच रही है, उसको इंडिकेट कर रही कि मुझे ये इच्छा है। पति बोल रहा है अरे ये अच्छा समय नहीं है, थोड़ा रुको, दो तीन घंटा जाने दो, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। पत्नी की वो इच्छा पूरी करना पति का कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि उसको टाल देना है, संत होगा तो भी पूरा करना है। वो इच्छा पूरी करने को तैयार है, वो बोल रहे हैं नहीं ये टाइम सही नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ मेरे फादर भी ऐसे ही थे, उनको बहुत ज्ञान था इसके बारे में, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर व्हाट। क्योंकि भौतिक दुनिया में टाइम का बहुत वैल्यू होता है, किस टाइम पे आप क्या कर रहे हो इम्पोर्टेंट है, टाइम इज़ अ वेरी एसेंस। टाइम कौन से टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कौन सा स्थिति में क्या कर रहे हो, उसका परिणाम वैसे मिलेगा आपको। तो वो बोल रहे हैं इस अच्छा समय नहीं है, फिर भी दीति इतनी कामुक हो गई, इतनी काम वासना से प्रभावित हो गई कि बार बार खींचती रही उसको, और उनका संबंध उसी समय पर हुआ। क्या कहूँ आपको, जैसे ही गर्भधारणा हुई ना उसी समय पृथ्वी पर भूकंप हुए, तूफान आया, उल्कापात, यानी क्या व्हाट इज दैट मीटियोर्स फॉलिंग, ऐसे भयंकर दुर्घटनाएं हुई। और कश्यप मुनि ने कहा आपने जिद किया ना, अभी दो बड़े राक्षस, भयंकर राक्षस जो पृथ्वी पर नहीं ब्रह्मांड में हाहाकार मचाने वाले हैं, वो जन्म लेने वाले हैं। अभी आपके गर्भ में आ गए हो, उनका अभी तक बाहर एंट्री नहीं हुआ है, अंदर ही एंट्री हुआ है। अंदर एंट्री होने से इतना विश्व में परिणाम हो रहा है, देखो आप सोचो बाहर आने पर क्या होगा। इस प्रकार से दीति के पूरी गर्भावस्था में पृथ्वी पर ऐसे भयंकर घटनाएं होती रही, अशुभ अशुभ घट। तो क्या हुआ, एक कार्य गलत समय पर एक कपल ने किया, वो भी पति तैयार नहीं था लेकिन पति की पत्नी की जिद थी, तो विश्व को कितना नुकसान हुआ ये सोचना जरूरी है। हमको लगता है कि मैं पाप करूंगा तो क्या है मेरा नुकसान होगा, बाकी दुनिया का क्या, ऐसा नहीं है। अगर मैं जप करता हूँ, कारवार के छोटे से कस्बे में बैठकर मंदिर में 50 लोगों के बीच में बैठकर मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन वो जप का लाभ पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। कैसे, क्योंकि जब हम जप करते हैं ध्यान से करना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू चैंट अटेंटिवली। तो अटेंटिवली जब हम करते हैं जप, कहीं भी अकेले पब्लिक के साथ मंदिर में घर पे किधर भी ध्यान से करते हैं, तो एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण होती है, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती है, इट इज़ इटर्नल, वो शाश्वत होती है, वो चिरंतन होती है, वो वहीं रहती है। आज आपने जप किया ऐड हो गया उसके अंदर, कल जप किया ऐड हो गया, 10 साल पहले से कर रहे हैं उसका भी अमर जमा हो रहा है, वो क्या है अक्षय खाता। अक्षय खाता मतलब क्या, इन एग्जॉस्टिंग अकाउंट, उसमें खाली जमा होता है, उसमें एक्सपेंस नहीं होता है, वो खाता है वो। और शास्त्रों में लिखा है कि जिंदगी जीना है तो वो खाते में जमा करते हुए जीना है, ऐसे खाते में जमा मत करो जो जमा करते ही खर्च हो जाता है, ऐसे खाते में जमा करो वो आपके साथ में रहेगा और एंड में जब जाने का समय आएगा तो पूरा आपको काम आएगा, तभी भी नष्ट नहीं होगा, काम आएगा फिर भी वैसा ही रहेगा वो, मतलब यूज़ होगा उसका फिर भी नष्ट नहीं होगा। हमारा पैसा कैसा, यूज़ हो गया तो समाप्त हो गया, कल हमने जीरा ले लिया तो हमारा पैसा समाप्त हो गया, पैसा ही नहीं रह गया जेब में, उतना ही रह गया, जितना जीरा लिया उतना कम हो गया और डालूंगा तो फिर और जीरा ले सकता हूँ, वैसा है। तो वो जब हम जब करते हैं तो पूरे विश्व को लाभ होता है, और जब मैं कोई गलत कार्य करता हूँ तो भी मैं नेगेटिव एनर्जी निर्माण कर रहा हूँ, और वो नेगेटिव एनर्जी सारे विश्व को परिणाम करने वाली है। इसका प्रूफ क्या है, एक प्रभुपाद जी, एक प्रभुपाद, एक व्यक्ति, छोटे से बंगाली, ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, बंगाली एक्सेंट में बोलते हैं लेकिन प्योर डिवोटी है, और वो व्यक्ति पैसा नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई बड़ी कुछ सपोर्ट नहीं है, ऐसे अमेरिका जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हजारों लोगों को और करोड़ों लोगों को आज भी जाने के बाद भी भक्त बन रहे लोग है ना। आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद को देखा है बताओ, हाथ ऊपर करो, जिसने प्रभुपाद को देखा है फिजिकल? नहीं, मैं भी उस दुनिया में था उस समय, लेकिन मैं प्रभुपाद को नहीं मिला, बहुत पास में था, 20 किलोमीटर्स ओनली मेरा घर, लेकिन नहीं मिल पाया, भाग्य नहीं था, लेकिन कुछ वैसा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तो उनकी वाणी, उनके लेक्चर्स, उनके दिए हुए आदर्श, उनकी शिक्षाएं, उसको हमने पालन किया, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभुपाद जी से नहीं मिले हम लोग, लेकिन प्रभुपाद जी के वजह से हम लोगों का जीवन जो है परिवर्तित हो गया, एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति ने ऐसे अनेक व्यक्ति निर्माण किए जो आज विश्व में अनंत परिणाम कर रहे हैं। उसी प्रकार से भाई नाम लेना यहाँ अच्छा नहीं है, कितने प्रकार के आतंकवादी है, एक था वो, उसको अमेरिका के लोगों ने ऐसा पकड़ के कितना करोड़ों खर्च किया, 300-400 करोड़ खर्च किया उसको मारने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से दुनिया में कितना आतंक फैल गया था, कितनी दहशत फैल गई थी, कितना नुकसान फैल गया था, कितना कल्याण रुक गया था, कितनी गलत चीज़ें हो रही थी एक व्यक्ति की वजह से। तो आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम लोग गलत करेंगे तो दुनिया में फ़र्क पड़ेगा ही, छोटा मोटा फ़र्क पड़ता ही है। समझो आप अभी डीटी वर्शिप कर रहे हैं और आपको किसी से भक्त से झगड़ा होकर बहुत गुस्सा आया हुआ है और वो आपके मन में अभी भी है, कल का जो प्रसंग हुआ है अभी बहुत डिस्टर्ब है आप, और वो डिस्टर्ब कंडीशन में आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो आपके साथ में जो डीटी वर्शिप कर रहा है ना उसको लगेगा प्रभु जी बहुत डिस्टर्बड है आज, आप बोल नहीं रहे कुछ, अपना कर रहे हैं काम, लेकिन मन का जो विचार है ना उसका भी आभाव होती है, इट हैज़ गॉट अ फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, नेगेटिव और पॉजिटिव, और वो जो पास में आएगा उसको अफेक्ट करेगा। और समझो आप बहुत स्पिरिचुअली ब्लिसफुल हो तो आपके साथ जो डीटी वर्शिप कर रहा है उसको लगेगा कि प्रभु जी का संग में आनंद आ रहा है, इनके संग में ड्रेसिंग करने को बहुत मज़ा आ रहा है। इट कैनॉट बी हिडन, पॉजिटिविटी ऑल्सो कैनॉट बी हिडन, नेगेटिविटी ऑल्सो कैनॉट बी हिडन, बोथ आर देयर एंड दे बोथ आर इफेक्टिव ऑन नियर बाय पीपल, जो पास के लोग हैं उनके ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक चेतना का परिणाम होते रहता है। तो ये हुई इस पूरी कथा की भूमिका, और इस कथा का वर्णन फिर हम कल करेंगे, आज का भी जो श्लोक में दिया है उसका वर्णन कल करें, लेकिन ये अगर बैकग्राउंड पता होगा ना तो कथा के विषय में आप और गहराई में जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना भयंकर युद्ध कर रहा है, इतना भयंकर आतंक कर रहा है, कितना पापी था ये जय, तो हिरण्याक्ष बन के आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो पापी नहीं है, वो भगवान के लिए ये काम कर रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहा है, भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भयंकर काम कर रहा है। जैसे ड्रामा हो रहा है उसके अंदर मैंने भी एक बार रावण का रोल किया था और मेरे को देखकर बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा था उसमें, और जब सीता देवी वो रावण को कुछ गलत गलत बोल रहे थे पब्लिक तालियां बजा रहे थे उसके अंदर, क्यों? क्योंकि ड्रामा में लगता है कि हर ये दुष्ट आदमी है इसको मारना चाहिए। पिक्चर में भी कभी देखो विलन की मृत्यु होती है, हीरो विलन को मारता है तो थिएटर में सब लोग ताली बजाते हैं, बिकॉज लोगों को एविल अच्छा लगता नहीं है, पीपल डोंट लाइक एविल, और जब भी दुष्टता का नाश होता है तो अच्छे आदमियों को खुशी होती है, वाह गुड गुड, ऐसे होना चाहिए, दुष्ट नाश होना चाहिए, सुख का मतलब संतों का विकास होना चाहिए, दुष्टों का नाश होना चाहिए। तो ये जो लीला है सब ये भगवान ने लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, ये भगवान ने लिखा है, भगवान ने ही एक्टर चुने हैं, भगवान ने ही उनका रिहर्सल लिया है और भगवान ही वो ड्रामा कर रहे हैं। उस ड्रामा में भगवान हीरो बन के आते हैं और वो लोग विलन बन के आते हैं, हीरो विलन के बीच में युद्ध होता है और विलन की मृत्यु होती है, सब लोग ताले बजाते हैं, ऊपर से देवता लोग फूल बांटते हैं, फूल की वर्षा करते हैं, लेकिन सब लोग भगवान के भक्त हैं। रावण भी इतना राम का द्वेष किया, किसी ने जय बोला श्री राम तो बोला श्रीमत लगाओ, लेकिन मरते हुए श्री राम कह के ही शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो भी जय था दूसरे जन्म में है ना, और विजय कुंभकर्ण था, इसमें हिरण्यकशिपु को विजय था, जय और विजय। इसलिए भगवान की लीला सुनना बहुत बढ़िया है, इसके अंदर इतना सुंदर सुंदर रहस्य है, इतना सुंदर सुंदर तात्पर्य है, इतना सुंदर शिक्षा है, इतनी सुंदर प्रेरणा है कि आपको एक बार आपने अगर अच्छे चार नियमों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया तो आपको इतना स्वाद आएगा, इतना स्वाद आएगा आपको, और कुछ सुनना अच्छा ही नहीं लगेगा। और कोई दुनिया के लोग आके आगे पीछे बात करने लगेंगे, बोले बात करो यार, और कुछ ज़्यादा बोलना है क्या, बस स्टॉप इट, वो सुनना है मुझे, क्योंकि ये सुन के मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, वो सुन नहीं पाऊंगा मैं जो भगवान की बात मुझे सुननी है। और मैं बताता हूँ आपको कि अगर कभी आपसे बहुत डिस्टर्ब हो गए किसी भी कारण से, मंदिर में भी डिस्टर्ब हो सकते हैं या बाहर डिस्टर्ब हो सकते हैं, देखो भौतिक दुनिया है सब ये, अल्टीमेटली मंदिर में भी हवा कहाँ से, बाहर से आ रही है ना दरवाजे बंद करेंगे तो भी हवा तो बाहर की है ना इधर से, तो मंदिर भी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है, तो उसके अंदर भी गड़बड़ होता है भौतिक दुनिया में, कभी कभी झगड़े होते हैं, कभी मतभेद होता है, कभी अच्छा लगता है, कभी आनंद आता है, अधिकतर आनंद होता है लेकिन तकलीफ भी होती है। अगर आपको अपने घर में रहते हुए या मंदिर में रहते हुए कुछ कष्ट होकर माइंड डिस्टर्ब होता है, तभी आप तुरंत कृष्ण की लीला पढ़ना शुरू करो, राम की लीला पढ़ना शुरू करो, गौर लीला पढ़ना सुनना शुरू करो, श्रवण या पठन तुरंत करो, आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तुरंत आप उस डिस्टर्बेंस से मुक्त हो जाएंगे, यू विल बी इमीडिएटली डिलीवर्ड फ्रॉम दैट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और माइंड। लेकिन हम लोग क्या है, कथा में बोलते हैं ये डिस्टर्ब होते हैं तभी नहीं सुनते उसको, कथा में लोगों को सुनाते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन जब एक्चुअल डिफिकल्टी आती है तभी हम लोग और कुछ इससे बात करो, उसकी बात करो, उसको डिस्टर्ब करो, उसको कंसल्ट करो, उसका एडवाइस ले लो, उसका सहारा ले लो, वकील के पास जाओ, ये सब करते रहते। जिसको ये रियलाइजेशन हो गया है ना, वो व्यक्ति आपको तुरंत माला उठाकर भगवान का नाम लेते हुए या भगवान की कथा सुनते हुए या भगवान की कथा पढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि उसको ये अनुभूति हो चुकी है कि दुनिया के हर कष्ट का, हर डिस्टर्बेंस का, हर यातना का उपाय भगवत लीला है, भगवान नाम है, इसलिए ये भागवत कहा गया है। क्योंकि उस समय परीक्षित महाराज पीड़ा में थे, कष्ट में थे, प्रश्न में थे, क्वेश्चन मार्क में थे, क्या किया जाए, क्या करूं मैं, उसके उत्तर में ये पूरा लीला बताया गया है भागवत का। और एंड में क्या हुआ, वो सांप आने के पहले ही भगवत धाम चले गए, वो सांप तो खाली फॉर्मेलिटी, उसको आना था इसलिए वो आया उड़ के, सब सर्प पक्षी दंश किया और मर गया, लेकिन मृत शरीर को दंश किया, उसके पहले ही परीक्षित महाराज शरीर छोड़कर भगवत धाम चले गए। इतनी शक्ति है इसके अंदर, पूरी यातना पीड़ा क्लेश को नष्ट करके आनंद में डुबोकर परीक्षित को भेजा गया, किससे, हरि कथा का श्रवण करते हुए, हरि कथा का अमृत दिया सुखदेव जी ने, उनको पान कराया, भेज दिया उन्हें। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी। देखो सकारात्मक ऊर्जा, प्रभु जी का प्रश्न है, सकारात्मक ऊर्जा भी है नकारात्मक ऊर्जा भी है, तो प्रश्न क्या है आपका? हाँ, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अगर आप वो सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करने में आपका हृदय डालेंगे ना उसके अंदर, तो वो नष्ट करेगी, और हैफेजार्डली करेंगे ना, जैसे हम लोग पता है कि अभी कष्ट हो रहा है तो जब करना चाहिए, लेकिन जब करते हुए भी वही याद आ रहा है, वही सोच रहा है, उसका ही फोन कर रहा है, उसको भी देख रहा है, तो फिर वो सकारात्मक एनर्जी इतना पावरफुल नहीं होगा, नकारात्मक एनर्जी उसी को दबाएगा। वो आश्रय जो है ना भगवत कथा और भगवत नाम का, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, इतना आसान नहीं है लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो दिव्य होनी चाहिए, केवल कोई बोलेगा हंसो हंसो हंसो, ऑक्सीजनेशन करने दो फिर आपका पॉजिटिव एनर्जी आएगा, वो टेम्पररी है, सब है उसमें, ऑक्सीजन लेने से आपको अच्छा लगेगा थोड़ा देर के बाद, लंबा लंबा श्वास होगा, आप जोर जोर से हंसेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वो दिव्य सकारात्मक शक्ति नहीं है, वो टेम्पररी। आपको बोलेंगे जाके भाग के आओ, थोड़ा रनिंग करके आओ, पहाड़ चढ़ के आओ, तो आपको अच्छा लगेगा, माइंड हल्का हो जाएगा, सही है लेकिन टेम्पररी है। हम लोग उस सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो चिरंतन है, जो डिवाइन है, दिव्य है। हम लोग भी जा सकते हैं, हम भी जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, हम लोग भी प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, हम लोग भी थोड़ा मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसके ऊपर भगवान नाम है, इसके ऊपर हरि कथा है, हरि कथा सीमित नहीं है, तो हमको उसका एब्सोल्यूट सहारा लेना चाहिए। और आप करके देखिए, आगे भी जीवन में समस्या आएगी, करके देखिए, ज़्यादा ज़्यादा करके देखिए, अधिक अधिक करके देखिए, आपको पता चलेगा कि यही अल्टीमेट उपाय है। इज अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ। और कोई प्रश्न है? जीवन में, हमारे जीवन में जो भी होता है उसके अंदर कुछ संदेश छुपा रहता है। एवरी सिंगल इवेंट इन आवर लाइफ हैज़ गॉट अ लेसन टू लर्न। अरे हम लोग का कान और आँख बंद रहता है उसके लिए, इसलिए हमको समझता नहीं है। लेकिन जब भक्त बनते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे कार्य शुद्ध हो जाते हैं, हमारा पैसा भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम दान करते हैं। तो वो जो वातावरण निर्माण होता है, उस वातावरण में आपको हर एक घटना में एक मैसेज मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो प्रवचन में सुरंत आपको स्ट्राइक होगा, अरे हाँ मैंने वो घटना में ऐसा एक्सपीरियंस किया था, अभी मैं सुन रही हूँ, हाँ अभी सही है वो। तो ये न के न प्रकारे आप भक्त बनने के बाद भगवान आपको ये विचार देने का योजना बनाएंगे कि जो लेसन है वो आपको मिले, ऐसी व्यवस्था भगवान करेंगे। इसलिए क्या बताया, नित्यम भागवत सेवाया, घर पे या इधर रोज पढ़ना है। उसी के माध्यम से आपको रोज एक लेसन मिलेगा। आप पढ़ कुछ रहे हो लेकिन आपके जीवन की घटना कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ, इसके साथ जुड़ जाएगी वो, और तुरंत आपको वो समझेगा, हाँ दिस इज। और वो उसको कहते हैं साक्षात्कार, उसको कहते हैं अनुभूति। वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट इज़ अ रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन कभी बदलता नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग। एक बार किसी को रियलाइज हो गया कि दारू पीना शरीर के लिए घातक है, तो फिर वो बोलेगा नहीं अभी मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करूँगा वो। फिर बोलेगा ये जो है विष है, इसको मत पियो, आप पीते आ रहे हो, गलत कर रहे हो। तो बोले ठीक है आदत हो गई तो धीरे धीरे छोड़ूंगा। नहीं, आपको अगर पता चला, साक्षात्कार हुआ कि ये विष है, तो आपको, आप अगली बार एक कण भी नहीं पियेंगे, तड़पेंगे उसके लिए, लेकिन आप हाथ नहीं लगाएंगे, मुझे मरना नहीं है। यू आर राइट माता जी, एवरी इवेंट इन लाइफ इज टीचिंग समथिंग टू अस, बट इफ यू आर प्योर यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट प्योर यू विल फेल टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड मच लेटर। अपने को क्या करना है, आज कुछ हुआ तो आज समझना चाहिए, तो आज से कल से मैं उसका कुछ काम कर सकता हूँ उसके अनुसार, लाइक दैट। पर आज का लेसन अगर मैं 5 साल के बाद सीखा तो 5 साल मेरा वेस्ट हो गया, है ना? और कोई प्रश्न? यस, हाँ यस। हाँ बोलो, भगवान क्या करते हैं? हाँ फाइल इनका प्रश्न मेरे परसों के लेक्चर से है, हाँ, कि भगवान की भक्ति सागर की तरह गहरी है, फिर भी हम जाने से डरते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति है अभी भी। अभी आपने क्या बोला, एग्जांपल क्या दिया, समुद्र किनारे हम खड़े हैं, आगे समुद्र है, पीछे क्या है, कहाँ से आए समुद्र किनारे, जमीन से आए ना, किधर से भी, भूमि पर से आए, उधर घर है अपना, प्रॉपर्टी है, पैसा है, फैमिली है, अटैचमेंट है। तो जब हम लोग समुद्र के सामने खड़े हैं, फिर भी पीछे डोरी से हम लोग बंधे हुए हैं, खींच रहे हैं कोई अपने को, वो जो आसक्ति है वो हमको आगे जाने को रोकती है। तो उसको कर्तव्य रूप में करेंगे तो वो जो डोरी खींचती है वो बंद हो जाएगा, अगर आसक्ति रूप में करेंगे तो वो आपको कभी आगे जाने देगा ही नहीं। वो आप दिख रहे हैं सामने समुद्र है, सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन आप नहीं जा पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डरो मत, भक्ति करने से धीरे 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 ये सभी आसक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, आपको अनुभूति साक्षात्कार मिलेगा कि कोई किसी का नहीं है, जिसको हम अपना समझते हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, हमारा अपना केवल एक ही है, वो है भगवान। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, टाइम जाएगा ना, आपको सारा चीज़ ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा, नो कन्फ्यूजन। और ये कृपा है भगवान की, ये आपको समझ में आएगा तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई किसी का नहीं है। जो भी है, जितने रिश्ते नाते हैं, वो सब कर्मों का खेल है, और आपको दुख देने के लिए सब ये सब होता है। भौतिक दुनिया में सुख के लिए करते हैं, लेकिन मिलता दुख है, और अंत में पता चलता है कि सारा मेहनत बेकार है। इसके अंदर दिल लगाया उसमें केवल दुख ही मिला, उसमें दिल लगाया तो खुशी मिला, तो पहले क्यों नहीं उसमें दिल लगाया, ताकि पहले से ही खुशी मिलती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी दिल लगा सकते हैं। ये हृदय जो है ना, किसको देना है? परिवार को देना है, दुनिया को देना है, विश्व को देना है, कि हृदय भगवान को देना है? यही बड़ा चॉइस है दुनिया में, दिस इज़ द बिगेस्ट चॉइस। आप एक बार चुन लेते हैं कि हृदय उनका है और उनको ही देना है, कृष्ण भगवान को, तो आपका जीवन उसी टाइम से सफल है। परी गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, परिवार वाले हो, पैसे वाले हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी समय से आपका जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। फिर उसको बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि आज दिल उनको दिया, कल वापस लेके इनको दे दिया, फिर इनके लिए वापस ले लिया, ऐसा बैक एंड फोर्थ नहीं करना है। बैक एंड फोर्थ करने से क्या होता है पता है आपको? समझो आपने आज अपना आके भगवान मैं आपकी हूँ ऐसा करके बोला, फिर कल जाके घर गए, अरे बेटी भी मेरी है, मैं भी बेटे की हूँ, ऐसा आगे पीछे करेंगे ना, दोनों पार्टी आपकी नहीं बन सकती। समझ में आपको है? बोथ पार्टीज कैन बी कांट बी योर्स। वो भगवान भी बोलेंगे ये तो मेरा लगता नहीं गारंटी का मेरा भक्त है, और वो बोलेंगे ये माता भी मेरी ऐसी है कि वो कुछ गारंटी, कभी भगवान के विषय में पागल होती है, कभी मेरे विषय में कुछ भरोसा नहीं, क्या करेगी। दोनों पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दो नाव पे पाँव रखना नहीं है नदी में, एक पाँव इस बॉडी बोट पे, एक पाँव एक बोट पे, निश्चित रूप से आप बीच में गिर जाओगे। आपको दो बोट में एक बोट चुनना है, भगवान के बोट चुनना है कि परिवार के बोट चुनना है। दिल से हृदय से उनकी बोट में रहो और कर्तव्य रूप में इनके पास रहो, इनको दिखाओ कि अच्छा है सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, कर्तव्य निभा रही हूँ, लेकिन हृदय जो है ना इनको है। हमारा उल्टा रहता है, भगवान के लिए फॉर्मेलिटी और हृदय जो है परिवार में पैसे में, यही भक्ति है अल्टीमेटली। हमको भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं ना, वो यही है, इसी से हमको अनुभूति होती है कि देखो हृदय के अधिकारी तो वो हैं, अपना बोली अपना बना लो, उनको ही बोलना है। परिवार के लोग आते हैं जाते हैं, जिंदगी लेते हैं मर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, फिर पोता आएगा फिर पोती आएगी, फिर ये सब चलते रहेगा। भगवान वही रहेंगे, आप मर जाएंगे तो भी दूसरे जन्म में भगवान वही रहेंगे, जन्म जन्मांतर के सुरुद है वो। तो इसलिए ये समझ बूझ के एक बार उनको बोलना है भगवान मैं आपका हूँ, तव अस्मिति। एक बार इनके सामने खड़े रहकर बोलेंगे ना, एक बार इनके सामने खड़े होकर हृदय से अगर बोलेंगे आप, हृदय से मतलब 100% कि मैं आपका हूँ, आप शायद भूल जाएंगे आपने क्या बोला था, वो नहीं भूलेंगे। भगवान रामचंद्र ने वरदान दिया है विभीषण के समय, रावण भी आ गए तो मैं उसको सहारा दूंगा, और एक बार मेरे सामने कोई आके बोलेगा मैं आपका हूँ, मैं नहीं भूलता उसको, उसकी जन्म जन्मांतर तक रक्षा करता हूँ मैं उसकी। ऐसे हमारे भगवान हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं, इतना प्रेम कौन कर सकता है क्या? ये जीवन में भी नहीं कर सकते हैं, जीवन के बाद कैसे करेंगे? वो LIC बोलता है जीवन में भी जीवन के बाद भी, जीवन के साथ जीवन के बाद, वो LIC भी ऐसा एक डायलॉग है, लेकिन है क्या ऐसा? नहीं है, एक ही व्यक्ति ऐसा है जीवन के साथ और जीवन के बाद हमारे साथ है, वो है भगवान। उसको समझ में आया वो लकी है, समझ में नहीं आया वो दुर्भागी है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कल भी आइए, आगे की कथा इस श्लोक की भी बताएंगे, आगे की भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।